राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 मई 1993 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
जब अपने भगवान के पीछे पड़ते हैं तो लोग अपने पीछे क्यों पड़ते हैं?
आप सच्चे पड़ जाओ भगवान के पीछे तो लोगों में बहुत आपका आकर्षण होगा। ये तो अभी नकली की बात है। लोग पीछे पड़ते हैं तो वैसे आप भगवान के पीछे पड़े नहीं हो मेरे समझ में। ये प्रश्न क्या है इसे मालूम होता है।
और भक्ति घर में क्यों नहीं हो सकती?
बिल्कुल हो सकती है। बाहर जाने की जरूरत नहीं किंचित मात्र भी। सीता है, कुंती है, द्रौपदी है, कद बाहर गई है। धर्म बैठे हो सकता है अच्छी तरह से? मैं तो ये मानता ही नहीं। मैं तो मानता कृष्ण भगवान उपदेश देने वाले भी कृष्ण थे, सुनने वाले कृष्ण थे। कृष्ण मेरे बोले बाहर कहाँ गए? ना अर्जुन गए ना भगवान गए। बहुत भक्त हुए पहले, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े महात्मा हुए, अभी शेष जी और गोविंद का जी हुए तो कदबार गया है। अच्छे हुए कितना लोग प्रचार कर दिया आपने। बाहर जाने वाले कितना किया है तो।
मनुष्य जन्म का आहार यदि शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है तो सब्जियां दूध ये भी तो शाकाहारी नहीं है
ना? ये नहीं है। यह तो सूक्ष्मता से विचार करो तो श्वास लेने वाला भी शाकाहारी नहीं है। ऐसे चलता वो भी शाकाहारी नहीं कह सकता। जीवा जीवाहार बिन जीवा जीव जीव नहीं। तुलसी करो विचार जीव दया क्यों पालिए। तो इसमें यही है कि जहां तक आप पाल सको स्थावर और जंगम दो जीव है, उनमें स्थावर जंगम है, उनकी अवस्था सुषुप्ति की तरह मानी है। जैसे सुषुप्ति में किसी ज्ञान नहीं होता ऐसे इनको ज्ञान नहीं होता। और जंगम है उनमें भी तारतम्यता है। तो ये जैन में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय ऐसे अधिक अधिक इंद्रियों वाला जिसकी ज्यादा हिंसा मानी है ऐसी जैन में समात है। अपने मत में भी है कृतन कार्य 81 तरह की हिंसा होती है ऐसा माननी। तो वो जहां तक बना है वो करना। दूसरे कहते हैं साग दूध और दही इनमें भी होता है। तो शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्ना अप्नोति किल्बेषम्। गीता ने कहा केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किया जाए वो पाप का भागी नहीं होता। इसके पेट में है कि पाप होता तो है, पाप का भागी नहीं होता। केवल शरीर निर्वाह मात्र कर्म ऐसे ही स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्ना प्रवृत्ति के विषम। वर्णों के वास्तवों के अनुसार जो शास्त्रों ने विधि बताई है उस विधि के अनुसार काम करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होते। इसका अर्थ क्या, पाप तो होता है विधि विधान से वैसे ही काम करते हैं तो पाप लागू नहीं होता, ये माफ होता है। जितनी असावधानी ज्यादा रखते हैं उतना ही उनको पाप होगा, सावधानी विशेष रखेंगे तो भूल में बहुत कम होगा पाप हो। इस वास्ते पाप होता है। हिंसा कायाद्यनी हया, भागवत में आया है कि हिंसा पर विजय कैसे करें, हिंसा कोई नहीं हो तो उस बता काया देनी है या काया की यह चेष्टा ना करे, जितनी चेष्टा कम करेगा उतनी हिंसा कम होगी, हिंसा पर विजय करने के लिए बताया है।
जब शरीर से भिन्नता का अनुभव होकर एक तत्व रह जाता है तो वे शरीर की पूजा फोटो संस्पर्श आदि बचाए रखना ये एक दिन सीता को दृढ़ करना नहीं है क्या?
हाँ है तो सही है, भूल है उनकी।
समाधान कैसे किया जाए?
समाधान तो ऐसे किया जाए कि यद्यता चलते शेष तत्व देना, ऐसा करना चाहिए सबको, समाधान है। और ऐसा करते हैं तो भूलते हैं, आपको क्या अर्थ है, आपकी क्या बाधा लगी, भूल न करने दो। बताओ आपकी क्या बाधा होती है, शरण तुम्हारा पेट क्यों दुखता है, शरण देखो किसी व्यक्ति पर कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर सभ्यता है और सज्जनता है तो ऐसा काम नहीं करना, किसी की व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना, आलोचना नहीं करना। अगर ज्यादा शंका हो तो एकांत पूछ लो, आक्षेप करना ठीक नहीं है, ये आपके खुद के नुकसान है, दूसरे सुने उनके भी नुकसान है, फायदे की बात नहीं है, तो सभ्यता से काम लेना चाहिए।
दूसरा प्रश्न है कि कूड़े कचरे में शहरों में एक किनारे जलाया जाता है, आप उसका निषेध करते हैं, यदि वो कूड़ा पड़ा रहने दिया जाए तो बीमारी फैलती है, बाहर ही अंदर सुखाए कचरा बीमारी तो उसको गाड़ा जा सकता है क्या, तो भी जीव मरेंगे, गाड़ा जाएगा तो भी जीव मरेंगे, जलाया जाए तो भी जीव मरते हैं, तो बीमारी फैलेगी से, तो शहरों के पास में जो होने के कारण क्या करना चाहिए, खाली जगह न होने के कारण कूड़ा खुला नहीं रखा जा सकता तो जलाना आप निषेध करते तो क्या करना चाहिए, मतलब
बताएं क्या करें, वो बताएंगे हम जरूर पूछो। खेतों में भेज देना चाहिए जो बड़ा भारी उपकार होगा, खाद होगी जिससे अनाज पैदा होगा, लोग जियेंगे, बड़ी कीमती चीज है कूड़ा कूड़ा आप आग लगाते हुए, मामूली कीमती नहीं है, बड़ी कीमती चीज है, खेतों में अगर पहुंचे तो बड़ी खाद मिलेगी उनको और अगर अनाज पैदा होगा, बोलो इसका उत्तर दो मेरे को, मेरी बात काटो, आओ खेतों में बकेर देना भी सब कुछ नहीं हो गया, मिर्जा की मिर्जी हम क्या करें, पर आप गाड़ो तो जलाओ तो गलाओ तो बहाओ तो किस तरह से आप करोगे तो आप पाप के भागी होंगे, अगर आप खेतों में पकड़े तो कोई पाप भागी नहीं होंगे। हिंसा करते हैं जो खेतों के लिए खाद बनाते हैं, बहुत बड़ी भारी हिंसा करते हैं, खाद बनाने में कोरी लताएं लता हो जाती है, उनको पीस कर फिर खाद बनाते हैं और खेतों में छिड़क रहे हैं ऊपर से, जिसमें जीवों की हत्या होती है वो होती है, कहते हैं कि हम अन्न बचाते हैं जिस समय कोई हत्या नहीं होती, खेतों में कोई जहर नहीं छिड़का जाता था, उस समय में जितना अनाज सस्ता था आज इतना सस्ता मिलता ही नहीं, आप जो करते हो बेईमानी त्यों ही आपको दंड भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। क्षुद्र जंतुओं का आप नाश करते हो तो कभी क्षुद्र जंतु भी आपकी तरह बड़े होंगे, तो बारी आपके आएगी, ये बात बसोगे नहीं कभी, अगर ऐसा करते हो तो छोटों पर कृपा रखो, छोटों का मसल ते हो तो आपसे बड़े हुए आपको मसल है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप अपने से छोटों का नाश करते हो तो आपसे बड़े आपका नाश करे न्याय नहीं है, न्याय है। क्या दशा होगी? बड़ों की रक्षा करने का काम है, मसल नाश करने का काम है, बुद्धिमानी का उत्तार है जो निर्बुद्धि का नाश करे, कर्म पालन करे उनका। ये आज समझ में नहीं आती बात, स्वार्थ इतना आ गया है अंधा हो गया आदमी। स्वार्थ बुद्धि कामांध बुद्धि, दो बुद्धि होती है ना, कामना होती भीतर, स्वार्थ बुद्धि होती है तो आदमी समझ नहीं सकता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी। बोल तरह करो, मेरी बात को काटो, पूछो, बात करें।
प्रश्न, राम जी जब प्रकट हुए उन्हें खुशी में सबने दान दिया,
सबने दिया
और सर्वस्व दान दीन सब का मतलब जिन पा रखा नेता हूँ वो आखिर किसके पास गया?
सबके पास है जो हो गया, जो पहला चल रहे हो गया, जिसने रखा नहीं उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने दे दिया, है जहाँ भरपूर रह गया।
देख भाई ये बात समझ में नहीं, क्या शनिवार को दो मंजिल के मकान के ऊपर घर वाले में नागिनी आती है और मालकिन के पैरों में एक बार लिपट गई, लेकिन उसको कितनी दूर छोड़कर आ गए फिर भी वापिस आ जाती है, ये क्या बात है?
पता नहीं क्या बात है, कोई घर की स्त्री होगा जो बेचारी वहाँ आती है मोह के कारण से, तो उसको रख करके दूध पान चाहिए प्रयान कर
देते हैं।
पिछली
बात
बोल
पिछली बात सुनी नहीं है, पिछली बात
मानो बात ये आई कि दो तीन मंजिल वाले मकान में नागिनी आती है और मालिक के घर में लिपट गई, उसको पकड़ करके बहुत दूर छोड़ जाते हैं तो पीछे वो आ जाती है, क्या बात है? अब मेरे को सबका पता थोड़ी लगता है, मेरे पास में सबका समाचार मेरे पास आते ही नहीं, तो मैं कैसे उत्तर दे दूं? मैं जानता हूँ नहीं, मैं कोई अंतर्यामी में ही नहीं, मैं तो साधारण आप लोगों के घरों का भिक्षु हूँ, जो आप रोटी दे देते हम पा लेते और बात सुना देते। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बार बार सोने पर आती है तो घर की कोई स्त्री है वो नागिन बन गई है, तो अच्छा पिटारा लेकर उसमें उनको रखना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, वहाँ घर पर रखा आराम देना चाहिए, सर्दी गर्मी बरसा हवा से आदि से बचाव रखो, पालन करो उसका। ये हमारी सहमति है, करो आपकी मर्जी न करो, क्या कारण है हम जानते नहीं।
मेरा प्रश्न है, हाँ यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति में गुण ही है, यह कौन है यहाँ पे?
यह है साधक।
साधक तो महाराज जी सिद्ध की बात है, तो
सिद्ध हो जैसे अपने आप ही हो
जैसे,
यह करना सब साधक के होता सिद्ध के नहीं होता, शास्त्र सब मूर्खों के लिए है, विद्वान के लिए है ही नहीं, कोई शास्त्र नहीं। बोलो स्टार्ट करो। यह कहते हैं कि यह एवं वेत्ति पुरुषम और प्रकृति गुणेश सर्वथा वर्तमानोपी न से भूयो भी जायते। तो इसमें यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति तो यह करके कौन है, ये कौन है? ये कोई देवता है, एक मनुष्य है, एक यक्ष है, एक राक्षस है, कोई पशु है, एक पक्षी है, कौन है? यह करके क्या लें हम? या एवं वेत्ति पुरुषम एवं उपदृष्टान मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा पर एवं एवं यो वेत्ति। तो यह कौन है, ये प्रश्न है। मैंने कहा साधक है तो वो तो सिद्ध हो जाएगा, तो यह कैसे रहेगा? तो सिद्ध के लिए है ही नहीं, साधक के लिए है, शास्त्र सब मूर्खों के लिए है, विद्वानों के लिए कोई शास्त्र नहीं है, सब मूर्खों के लिए है। अभी प्रश्न करो कि सब फजीती करते हो तुम, अरे शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र अनुशिष्ट धातु है, उससे स्तन बढ़ते दामनी दर्शन कारण है, कारण अर्थ में स्तन बढ़ते होता है, उसका ले जाता है तो शास्त्र तो शास्त्र अनुष्ठ उसे दीर्घ हो जाता है, शास्त्र बन जाता है। शास्त्र का मतलब शिक्षा, अरे शिक्षा अशिक्षा वाली होती है, शिक्षा लेकर शिक्षा थोड़ी होती है, पूरा शिक्षा पा गया उसे लेकर शिक्षा क्या होगी? तो शास्त्र का अर्थ है शासन, तो शासन अनजान पर किया जाता है, जान पर शासन थोड़ी किया जाता है। तो शास्त्र सब अनजानों के लिए है, अनजान है, अनजानों में जो साधक है उसका नाम यह है। अनजान साधु तो होते नहीं सब, तो कहा यह किसका नाम है? मुझ साधक का
साधक का होने से तो प्रश्न ठीक हल हो जाता है जी, निश्चित में तो यह तो रहता नहीं, ये प्रश्न
तो हमारे हमारे गीता याद की हुई हमारे भूल जाते कि ये बात है गलत है, हमारे खुद भी मालूम होता है तो भूल को क्षमा कर देना, पूछो खूब की था पूछो, हमारे लाभ होता है, भूल निकलती है। खूब ये जितनी बातें पूछते हैं मेरे बड़े भाई लाभ शिक्षा मिलती है हमारे, हम सीख रहे हैं। और पूछो भाई, इतने आप ही पूछने वाला, मैं एक उत्तर देने वाला निकमा बैठा, भैया सच्चा काम तो ये है कि आत्म तत्व की प्राप्ति करो और वह परमात्मा से प्रेम करो और वह भगवान की दर्शन करो, इसे नीचे मत रहो, आत्म तत्व का अनुभव। इसके करने में सब समर्थ है, सब अधिकारी है, सब योग्य है, और के सबके सामने जो सामग्री प्राप्त होती है प्राप्त, उसी से ही तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ना नामे नए सामग्री की जरूरत है, नए नई योग्यता की आवश्यकता है, ना नए सामर्थ्य की आवश्यकता है, ना नई कोई विद्या की आवश्यकता है, आप जहाँ है वहाँ ही परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या कि परमात्मा सबके पास में है, केवल उसकी इच्छा उनसे उठकर अभिलाषा उसको प्राप्ति हो जाएगी। किसी एक देश में हो तो उसी बात नारी है, ये वो सब जगह है, सब समय में, सब काल में, सब देश में, सब व्यक्ति में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, सब जगह आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोच जय जीव न सो धीरे तही लिख प्रगट हुई, जहाँ जीव उड़ने से उधर है तही लिख प्रगट हुए, आदि अंत धन अनंत के सारे कार्य हुए, जहाँ जीव न चौधर है तही लिख प्रगट हुए। बताओ ये बात है ना, अब इन बातों में शंका जो पूछू और चलाओ प्रश्न, तो सबसे बात यह है कि आप चाहते नहीं हो क्या करें, हमारे इस बात का दुख है। परंतु मैंने आपसे मांग लिया भाई, किसी भूखे को अन्न देने का महत्व होता है, प्यासे को जल पिलाने का महत्व होता है, ऐसे एक भिक्षु को मांगता है उसको दो, आपके पास है देने की सामग्री, केवल आप तैयार हो जाओ और दूसरा मनोरथ छोड़ करके, दूसरा मनोरथ रखने पर प्राप्ति नहीं होती भाई, और वो जितना मनोरथ गए सब वो भी रद्दी, वो भी गया, वो भी सब गया, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जो असली हो सकता है उसको तो करते नहीं, और जो करते हैं वो आपसे होता नहीं, और होता है सो आपको भाता नहीं। बोलो कोई भाई बहन परमात्मा तत्व की प्राप्ति में अयोग्य नहीं है, असमर्थ नहीं है। प्राप्ति की सामग्री तो है रीता कोई नहीं है, उसके पास जो सामग्री है, जैसा बल है, जैसी बुद्धि है, जैसी योग्यता है, जितना जिसके पास समय है उतने में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभी कहाँ से लाए बताओ, भगवान उलाना दे नहीं सकते, तुमने इतना नहीं किया उतना नहीं किया, ये इतना उतना करना, उसी के जिसमें शक्ति है करने की, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति पूरी लगा दो, बाकी कुछ मत रखो, पूर्णता हो जाएगी। कर दो, समय सब लगा दो, समझ सब लगा दो, सामग्री सब लगा दो, समय सब लगा दो, पूरा का पूरा लगा दो, तो कहा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो सामग्री समय शक्ति सामर्थ्य ये और मिल जाएगा, और लगा दो और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और अंतिम प्राप्ति करा देगा। करके देखो, जैसे आदमी चलते 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 चलता ही चला जाए तो गिर पड़ेगा, पड़ा रहेगा, पड़े पड़े को चलने की शक्ति आ जाएगी, पड़े पड़े को चलने की शक्ति आ जाएगी। बोलते 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 बोलना बंद, ऐसे होगा ऐसे होकर बोल न सके, चुप हो जाओ, पढ़े रहो, आप सब बोलने की स्थिति आ जाएगी। भगवान का दरबार उदार है, आप सदव्यय करोगे तो शक्ति मिलती जाएगी, और अपव्यय करोगे तो शक्ति नष्ट होती चली जाएगी। इस वास्ते सदुपयोग करना ये खास बात है। मनुष्य सत्संग सुनता है कि ज्यादा सुन लू ज्यादा सुन लू ज्यादा सुन लू, अच्छी बात है, हम मना क्यों करें, हमारी तो जीव का ये चलती है, हम मना क्यों करेंगे। परंतु आप अगर जितनी समझ में आई है उसको काम में लाओ तो बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो ठीक है, आपने सुन लिया, हमने सुना दिया, हमारा भी व्यसन पूरा हुआ, आपका व्यसन हुआ। अजय राम जी, खेल खत्म और पैसा जम, आप राजी हो जाए, हम भी राजी हो जाए। जितना आपके समझ में आया है, जितनी चीजें जितने साधन समझ में आए हैं, उनमें जो जो सुगम साधन आपको मालूम दे उसको तत्परता से बड़ी दृढ़ता से पालन करो। अगर ये साधन सुगम हो जाएंगे और वे भी पालित हो जाएंगे, अंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यहां से मोटर चले रात्रि में हरिद्वार जा रहे हैं, तो हरिद्वार जाने के लिए कितने लाइट तेज करो, हरिद्वार यहाँ से दिखेगा नहीं। परंतु सही रास्ता है, लिखा हुआ रास्ता है, उस रास्ते में जहां तक दिखे वहां तक चले जाओ, ठेठ पहुंच जाओ, जितना दिखे उतना चलो, फिर भी दिखना अगर रहेगा साल पीछे रहेगी। ऐसे जितने साधनाएं आपको मालूम हुई है, यह है दिखना, और वैसे ही करना यह है चलना, तो आपके चलने से दिखना अगर यह रहेगा, जहां तक दिखे वहां चलते चलते पूर्णता हो जाएगी। एकदम बात ऐसी है, नहीं तो शंका करो उसमें। परमात्मा ने जीव को मनुष्य शरीर दिया है, तो शरीर में सामग्री भी भगवान दी है, समय भी दिया है, समझ भी दी है, सामर्थ्य भी दी है, जिससे ये परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ऐसी सामग्री सब दी है। आपको सत्संग के लिए यहाँ बुलाया तो ये छाया दूरी पहले कर रखी है, जगह कर रखी, फिर आपको बुलाया है। ऐसे भगवान ने कल्याण के लिए सब प्रबंध कर रखा है, फिर आपको कल्याण के लिए बुलाया है। हम अपने माँ के जन्म लेते हैं तो दूध तैयार पहले होता है, जन्म हमारा पीछे होता है। ये बात सच्ची, मैं माताओं पूछो, सच्ची बात है, एकदम पक्का। तो परमात्मा के दरबार में ऐसी जब बात है, ये जब प्रबंध है, तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो उसकी साधन सामग्री समझ नहीं देंगे। ऐसे ही कह दिया कि प्राप्ति के लिए है और न करो तो दंड हो जाए। क्यों महाराज, हमारे को सामग्री नहीं दी, समझ नहीं दी, हमारे सामर्थ्य नहीं दी, सामग्री नहीं दी, हम कह सकते हैं भगवान के धन दी है सब। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर साधन का धाम है, घर है। बहुत वर्षों पहले हमने तत्व चिंतामणि पढ़ी, तो दूसरे भाग में लेख पढ़ाई नया से निब्बे की बात है, ये बात पीछे की होगा, पढ़ा उसके पहले। उसमें आया है बृहदारण्य का ग्यारहवां ब्राह्मण, उसका उदाहरण दे दिया है कि जब शरीर बीमार हो तो समझना चाहिए कि मैं तप कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए बीमारी को। फिर मैं बीमारी के बाद में मरना होगा तो जंगल में हमारा निवास होगा, वहाँ अग्नि होगा, वो तपस्या होगी, ऐसे भाव का लेख है। भावना के अनुसार फल ऐसा नाम है, कुछ थोड़ा बहुत अक्षम फर्क हो सकता है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो, दुआ लिखा है। और इसमें लिखा है कि बुखार आवे तब समझना चाहिए कि तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या में कष्ट होता है, शरीर में जलन होती है, भूखा रहने से निर्बलता आ जाती है, परंतु दुख नहीं होता, क्योंकि वो में तपस्या की भावना है। तो ऐसे ही कोई किसी तरह की बीमारी आ जाए तो उसमें एक भगवान की भेजी हुई बीमारी है। आप जान करके भूखा रहते हो, जान करके पंचागर तपते हो, उसमें आपके मनगढ़ंत है, और शास्त्र की दृष्टि से भगवान का भेजा हुआ ये तप है, उसको भगवान का भेजा हुआ तब समझो, फिर प्रसन्न हो जाओ तो बड़ा भारी पुण्य होगा, तपस्या होगी, आपका कल्याण हो जाएगा। ये पुस्तक में पढ़ा मैं, तो मेरे पर एक असर हुआ, वो बताऊ आपको। कर्तव्य कर्म है वो तो अपने कल्याण के लिए है, परंतु पूर्वकृत पाप और पुण्य किए हुए उनका फल आ जाए, वो फल भी कर्तव्य पालन करें तो मुक्ति हो जाए। मैंने देखा भी बुद्धि बहुत विचित्र है। तो कर्तव्य कर्म करना वो तो कल्याण के लिए है, परंतु जो फल प्राप्ति हो जाए, उस प्राप्ति फल प्राप्ति को भी साधन बनाया जा सकता है, तो बहुत असर पड़ा मेरे पर। तो बहुत बुद्धि विचित्र होती है, ऐसी बात है। आप भी पढ़ता है, इसे पढ़ता आप जानो, हमारे देश का
होगा। समझा कोई पढ़े
है?
इतना समझा कोई जब पढ़े कि असर
क्या?
आप कितना समझा कोई?
तो आप हमारे तक समझ लो, क्यों देरी करो बताओ। एक बात बताओ, आप हमारी क्षमा कर दे रहे भाई, ये कसूर करता हूँ, ये क्षमा मांग कर करता हूँ। जब आपको पता नहीं लगता और मेरे को पता है, तो मेरे को खरीदना पड़ेगा, कहीं लाना पड़ेगा क्या? आपके सामने बैठा हूँ, पूछ लो। बताओ, नहीं तो राजी करने के लिए कहते हो कि स्वामी जी राजी हो जाए, हम राजी हो जाएंगे, आप राजी हो, राजी हो जाएंगे। नाराज होने में क्या फायदा?
महाराज जी पढ़ा ले कई बार ही है, आपको सच कह रहे हैं, बिल्कुल इधर दृष्टि नहीं गई। अब आप बोले जब जान लिया,
अब तो गया ना,
आप तो चले गए। आप बोले आज तो इतनी बार लेख पढ़ाया, वो सेठ जी वाला ले जो आप कह रहे हैं कई बार पढ़ा है, उधर दृष्टि नहीं है हमारे लोगों की। अब आप कहो जब दृष्टि नहीं है, इसलिए वास्तव में आप जानो
कर्तव्य कर्म तो प्राप्त भी परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए, परंतु भोगतव्य है तपा बुखार आदि गाना, ये तो कर्म का फल है। मैंने कहा कर्म में कर्मी योग में फल में भी कर्मी योग
सुख मान ले आदमी
तो उस सुख नहीं प्राप्त हो जाती है। दुख को सुख मान ले तो सुख की प्राप्ति हो जाती है,
तो सुख की प्राप्ति दुख मिट जाता है, आनंद हो जाता है। सुख की नहीं आनंद की प्राप्ति होती है। सुख और दुख दो तो ये रात और दिन की तरह है, आनंद दिन से रात से ऊंचा है। भावना के अनुसार फल होगा भाई, देख लो फिर सकता है। बहुत बड़े चीज लिया मैं, सब जगह ईश्वर रूप है, भावना के अनुसार फल यही है। सब जगह ईश्वर है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाति भावना तैसो ही फल हो। सारा संसार ईश्वर रूप है, जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप फल भी प्राप्त होता है। मनुष्य जब बीमार होता है तब बहुत ही व्याकुल हुआ करता है, उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु यह है कि यह उसमें रोग में दुख की भावना करता है। ये दुख आ गया, वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है और उसे दुखी होना और बात है। पीड़ा हो उसका अनुभव होना कोई दोष नहीं है, परंतु दुखी होना है ये मूर्खता है। यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए तो मनुष्य रोग जन्य दुख से अनायास ही बच सकता है। यह केवल दुख से ही नहीं बच जाता, तप की भावना से उसके लिए यह रोग ही तप तुल्य फल देने वाला भी हो जाता। देखिए फल का भी फल कितनी विशेष बात है, देखो एक लेखक कितने कितने क्या क्या है ऐसा असर पड़ा। इस रहस्य के समझ लेने पर ज्वरादिक व्याधियों में मनुष्य को किंचित मात्र भी शोक नहीं होता। जैसे तपस्वी पुरुष को तप करने में महान परिश्रम और अत्यंत शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु कष्ट उसके लिए शोकप्रद न होकर के शोक नाशक शांतिप्रद होता है, वैसे ही रोग के तप की भावना करने से रोगी को भी उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से रोग शोक प्रद न होकर हर्ष और शांति प्रद हो जाता है। भावना के अनुसार ही फल होता है, इसलिए रोग पीड़ित मनुष्यों को उचित है कि वे रोग के तप को ही उसको रोग में तप की ही भावना करें, बल्कि वह भावना करे कि यह रोग दयामय भगवान का दिया हुआ पुरस्कार रूप प्रसाद है, इनाम दिया है भगवान ने, अतएव परम तप है। वो होता है तप, ये होता है परम तप। यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना सुदृढ़ हो जाए तो अवश्य ही वे रोग आदि परम तप के फल को देने वाले बन जाते हैं। देखिए दुखदायक फल का भी कर्म योग हो जाता है, ये आया मेरे मन में। परम तप ये लोग दुष्ट तक्षशों से छुड़ाकर जीव को स्वर्ग आदि से लेकर ब्रह्म लोक तक पहुंचा सकते हैं। यदि ये फल आसक्ति या त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से परम तप का साधन किया जाए तो वह इन लोग और परलोक के लोक में मुक्ति रूप परम शांति की प्राप्त कराने वाला बन जाता है। तप से जैसे पूर्व कृत पापों का क्षय होता है, वैसे ही रोग पीड़ा आदि में परम तप की दृढ़ भावना से जीव के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। पापों का क्षय तो मार्ग भी हो जाता है। जब तक मनुष्य रोग में कष्टदायक रोग को कष्टदायक मानता है तभी तक वह उनके उससे द्वेष करता है, परंतु वही रोग जब तप के रूप में उपासना के रूप में परिणत हो जाता है तब उसके तपशील तपस्वी की भांति न तो द्वेष करता है न उसे कष्ट मानता है और न उसकी निंदा करता है। वो तो तप की तरह है, तपस्वी की तरह उसकी प्रशंसा करता हुआ किसी भी कष्ट को किंचित मात्र भी परवाह न करके परम प्रसन्न रहता है। इसी भावना से उसके लोग को परम तप समझा जा सकता है। कसौटी बता दी, बड़े खुश हो जाए, वाह 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 महाराज ने बड़ी कृपा कर दी। अत्यंत व्याधि ये देखिए, ये तो बता दिया, थोड़ी बात वो भी बता दी है, ये परम तप है तो इसमें भगवान की कृपा विशेष है। आप मन ग्रहण तप करते हो अब मन के अनुसार, ये भगवान का भेजा हुआ मांगते नहीं, हम चाहते नहीं, तप करना भी विचार भी नहीं है, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ये भेजा है तप। कितनी विलक्षण कृपा, वाह 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 वा। बिना मांगे भगवान ने ऐसा अवसर दिया हमारे। अंध की व्याधि बड़े होने पर जब मनुष्य के सामने मृत्यु का महान भय उपस्थित होता है, उस समय यह मृत्यु में परम तप की भावना करने से वह भी मुक्ति का कारण बन जाती है। बताइए, जो मरना हरेक को पड़ता है, भावना बदलने से मृत्यु मरने से कल्याण हो जाए। यद्यपि मृत्यु समय में विद्वानों को भी विद्वानों को भय होता है। पतंग योग समय लिखता है ये है विदुषो भी तथा अभिनिवेश, विदुषो भी तथा अभिनिवेश, मरण भय होता है। तब व्याधि विकल्प विषय मनुष्यों की उपाधि क्या है, तथापि मृत्यु के समय पहुंचे हुए आदि व्याधि व्यर्थ मनुष्य को मुक्ति के लिए इस प्रकार की भावना करने का हिसाब साध्य प्रयत्न करना चाहिए कि तप की इच्छा से मन में वन में गमन करने वाले तपस्वी जैसे उनके मित्र बांधव उनके लिए विदा कर देते हैं, उसी तरह मृत्यु के अनंतर मुझे भी मेरे मित्र बांधव वन में पहुंचा देंगे, वही मेरे लिए परम तप होगा। और जैसे तपस्वी पल में मन में जाकर वन में जाकर यथाग्नि पंचाग्नि आदि से अपने शरीर को तपाता है, वैसे ही मेरे बंधु बांधव मुझे अग्नि में दग्ध करके और तपावेंगे तो मेरे लिए परम तप होगा। इस प्रकार भक्त रूप महान कष्ट परम तप समझने वाले को शोक और मृत्यु का भय कभी न शोक होता न भय होता है, उसमें मृत्यु में भी परम प्रसन्नता होती है। जैसे तप के लिए मन में जाने वाले तपस्वी को मन जाने में भय नहीं होता, वो तो मानवता कुटुंबियों के वियोग का दुख न होकर प्रसन्नता होती है। और जैसे वन में चले जाने के बाद पापों के नाश तथा आत्मा की पवित्रता के लिए किए जाने वाले पंचाग्नि ताप से शारीरिक कष्ट हो शोक प्रद होकर उत्साह और शांति और आनंद प्रद होता है, वैसे ही उनकी सुदृढ़ भावना के मृत्यु से सुदृढ़ से मृत्यु को परम तप रूप से परिणत कर देने वाले पुरुष को भी मृत्यु का भय और शोक नहीं होता। ऐसी अवस्था होने पर ही समझा जा सकता है कि मृत्यु को परम तप के रूप में समझना समझार्थ है। श्रुति कहती है तद्वै परम तपो यद् व्याहत स्तप्यते परमम हैव शोकम जयते यम वेद ये तद्वै परम तपो यम प्रेतम अरण्यम हरन्ति परमम हैव शोकम लोकम जयते एवं वेद एतद्वे परमं तप यम प्रेत ददति परमं हैवं लोकं जयति स एवं वेद। बृहदारण्यक पांचवा अध्याय ग्यारहवा ब्राह्मण, इसका अनुवाद लिखा है हिंदी में। उपर्युक्त श्रुति का उपदेश करने वाले अनुसार प्रत्येक मनुष्य को रोग और मृत्यु में परम तप की भावना करके परम पद की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तब के पढ़ने से विचार आया कि तप करें वो करें और करना कुछ नहीं है, जो हार कर तप जाओ उसको ही करो, तैयार होना चाहिए। लोग कहते हैं कर्मयोग से क्या होता है, कर्मयोग से क्या क्या, कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है। कर्म में योग नहीं होता, फल में भी योग होता, प्रत्येक अवस्था में योग होगा, परमात्मा के साथ घनिष्ठ योग होता। तो समझते कर्मयोग से तो मन दोष दूर होता है, तुम्हें मन दोष दूर होता है, उनका मन दोष दूर, मुक्ति हो रही, तुम्हें मुक्ति होती, मुक्ति लिखी साहब पांचवा अध्याय का ग्रह ग्यारहवा ब्राह्मण प्रधान ने उपनिषद, उसके लिए उपनिषद की बात है। तो ये बात है सर, बोलो कैसी बढ़िया बात है। जो परिस्थिति आए वो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति कराने का साधन है, केवल साधन। मनुष्य शरीर कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इसमें जो परिस्थिति है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति का साधन ही साधन है, साधन ही साधन, केवल साधन। बोलो निब्बे साल में मैं वृंदावन था, 1990 उस समय मैं 2 महीना मौन रखा था, मौन रखा। तो हमारे विद्या गुरु जी भी पधार गए, हमारे सहपाठी चमनराम जी हमारे साथ में थे। तो वो एक दिन गए मथुरा जी, मथुरा जी से आए तो मैं तो चुप था, मौन था, मौनी बाबा बन गए हमको। तो उन्होंने मेरे को कहा, मित्र थे हमारे को मजाक किया करते, कहते तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज लाए, बहुत उत्तम चीज लाए। मैं सब क्या लाए, मथुरा से लाए, बहुत बढ़िया चीज है। मेरा से मेरे लिए क्या बढ़िया चीज लाए, कौन सी मेरी चीज बढ़िया लाएंगे, क्या बहुत लाए, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज लाए। मैं तो समझ नहीं सका कि मेरे लिए क्या बढ़िया लाए। फिर बताया कि तत्व चिंतामणि दूसरा भाग, तो दूसरा भाग पहले ही पहले मिला, मैं वहां पहला भाग तो पढ़ा हुआ था, दूसरा भाग उस समय मिला, तो ये तो बढ़िया ही लाए मेरे लिए, बहुत बढ़िया चीज लाए, बहुत उत्तम चीज। बहुत बढ़िया चीज लाए तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा, तो भाई बढ़िया चीज है, ठीक बात है। तो अब क्या सुनाएगा बता,
अब आपके लिए बीमारी की तपस्या वाली बात। एक आदमी का प्रश्न है कि क्या बीमारी के दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्या,
प्रयत्न करो बने। हम थे चित्रकूट, सत्संग हो रहा था, तो एक दिन मैं भिक्षा को गया, ऐसे भिक्षा सब परिचित मांग कर खा लेना हमारा काम है, आजकल हमारे मेहनता ही आ गई है, आप पे ही आती है। तो जाते थे तो भिक्षा के लिए गए, तो एक भाई को बुखार आया हुआ था, तो बुखार आया हुआ था, तो उसने कहा मेरे बुखार आ गया, वो तो बुखार आ गया तो भगवान ने तपस्या भेजी है, और मैंने और बातें बनाने मेरे आती है, कई दिनों से सीखा हुआ हूँ, तो वो साक्षात भगवान आए हैं, बीमारी रूप से भगवान आए हैं साक्षात, इस वास्ते आदर करो, मन से भगवान आए हैं और मिल रहे हैं, रोम रोम हमें भीतर से मिल रहे हैं, सब जगह मेरे से मिल रहे हैं, किसी मेरे पर कृपा है, लोग मेरे को मिल रहे हैं, रोम रोम हड्डी हड्डी में नर्स दर्श में मिल रहे हैं भगवान, मैं बड़ी व्यापार हूँ, ऐसे उत्साह है। तो उन्हें प्रश्न किया, तो फिर रोग दवाई तो नहीं लेनी चाहिए, वो दवाई नहीं लेनी चाहिए, भगवान आए तो उसके भोग लगाना चाहिए। शास्त्र कह रहे कि ऐसे बुखार में ये दवा होती है, तो वही बुखार आए तो उसके भगवान के भोग लगाओ, भोग लगाओ तो भगवान चले जाएंगे। तो मैं तुम्हारे यहाँ घर पर आया तो रोटी देंगे तो स्वामी जी चले जाएंगे, इस बार रोटी नहीं लेनी चाहिए तो चले जाए बुरी है, मैं चला जाऊं चाहे यहीं बैठ पालू, आपको तो भोजन कराना है तो यहीं बैठ करूंगा तो यहाँ बैठ कर करा दूंगा, और मैं लेकर चला जाऊं तो ऐसे बुखार रूपी भगवान आए तो आप भोजन भिक्षा दे दिए, भोजन दे दिया, भोजन चले जाए तो मर्जी उनकी, और बिराजो तो यहाँ बिराजो हमारा ये भोग लगाएंगे आपके। तो ये बात है, दवाई लो पर रोग मिटाने के लिए नहीं, रोग रूपी भगवान के भोग लगाओ। शास्त्र की विधि है ऐसा बुखार हो तो उसके लिए वात अजर पित्त अजर कफ अजर बंध अजर संधिपात अजर ऐसे कई भोग लिखे हैं। माधु निदान में पहले ज्वर का ही निदान लिखा है, ऐसे दर्द है उनमें अलग अलग है, उपचार अलग अलग है, दवाइयाँ अलग अलग है, जो जैसे ठाकुर जी में से पूजा हो ऐसे। और बोलो
बोलो भाई, गीता बस्ती पुस्तक का भजन जो है ना वो वाओ उसका प्रकाश है।
अच्छा गा दे भाई, मैं तो देव कह जो करो थे ही करो, हुकुम हो जाए।